ओम शांति। प्यारे बाबा, साकार मुरली में हमेशा कहते हैं कि बच्चे मेरे साथ आपके यूं तो सारे रिश्ते हैं, लेकिन उसमें भी मुख्य तीन रिश्ते बाबा के साथ बहुत महत्वपूर्ण है, बाप, टीचर और सतगुरु। और बाबा ये भी कहते हैं कि बाप को भूलो तो टीचर को याद करो, टीचर को अगर भूल जाते हो तो सतगुरु को याद करो। इन तीनों रिश्तों से लौकिक दुनिया में भी हरेक आत्मा को बहुत प्राप्ति होती है। ये तीनों रिश्ते ऐसे हैं जो मनुष्य को हमेशा देते ही देते हैं। इन रिश्तों में ना तो कंपटीशन होती, ना बराबरी की भावना होती, ना लेने की भावना होती। जो पिता का रिश्ता है, लौकिक दुनिया में भी आप देखेंगे सबसे अधिक प्रिय रिश्ता होता है, क्योंकि बाप से केवल मिलता ही मिलता है, वर्षा मिलता है बिना कमाई। जो टीचर का रिश्ता है, उसमें थोड़ी मेहनत करके फिर टीचर का वर्षा मिलता है, पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, अनुशासन में रहना पड़ेगा। और सतगुरु इस वर्तमान जीवन के लिए तो कुछ देता दिखाई नहीं देता, सतगुरु से जो मिलता है वो सब कुछ गुप्त रहता है। इसलिए दुनिया में बहुत कम लोग सतगुरु बनाते हैं। पिता सबको चाहिए, टीचर का वर्षा लेने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और लौकिक दुनिया के हिसाब से गुरु तो कोई कोई बनाते हैं। तो यहाँ भी बाबा हम बच्चों को कहती हैं कि इन तीनों रूपों में शिव बाबा का आपको रिगार्ड रखना है, और तीनों की प्राप्ति जीवन में अनुभव करनी है। जैसे लौकिक जीवन में बच्चे का जन्म होता है, हम भी रोज सुबह सुबह जन्म लेते हैं और हमें ये 24 घंटे ही मिलते हैं, समझ लीजिए एक दिन के 24 घंटे, क्योंकि हर रोज रात्रि को जब हम निद्रा देवी की गोद में जाते हैं तो कहती हैं नींद करना और मृत्यु होना, इसमें काफी समानता है, बस थोड़ा सा ही अंतर है। अंतर क्या है कि जब व्यक्ति नींद करता है तो ये ऐसे ही है जैसे कोई अपनी गाड़ी में बैठा है और उसके हैंडल, गियर, ब्रेक छोड़ देता है थक करके, और गाड़ी की सीट पे ही आराम करता है, बैठा तो गाड़ी में ही है। इसको कहती है नींद। बाबा ने मुरली में कहा है जब आत्मा थक जाती है तो इंद्रियों से डिटैच हो जाती है, है तो गाड़ी में ही ड्राइवर पर डिटैच हो गया। और मौत कहते हैं गाड़ी से ही उतर गया, केवल डिटैच नहीं हुआ। तो हर रोज हम इंद्रियों से डिटैच होते हैं, जिसे हम आधी मृत्यु कह सकते हैं, और अगली सुबह हमारा नया जन्म होता है, हम फिर से इंद्रियों से अटैच होते हैं। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके सामने कौन होता है? उसके माता पिता उसके सामने होते हैं। हम भी जब सुबह उठते हैं तो पिता के रूप में बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं। एक प्रकार से 24 घंटे के जीवन में वो हमारा नया जन्म है, शरीर में अवतरण है। और जब बच्चा जन्म लेता है तो माता पिता का पूरा प्यार उसको मिलता है। माँ बाप अधिक से अधिक समय अपने बच्चे को देते हैं। तो जो सुबह सुबह का समय है, अमृत वेले का समय है, उस समय बाबा माता पिता के रूप में हमारे सामने होते हैं। बाबा ने मुरली में कहा है कि अमृत वेले मैं भोलानाथ बन करके बैठता हूँ, कोई हिसाब किताब उस समय नहीं रखता हूँ, कौन घोड़ा सवार है कौन प्यादा है ये भी बाबा नहीं देखते हैं। और बाबा ने कहा उस समय सब खजाने खुले रहते हैं, किसी के ऊपर कोई ताला चाबी नहीं होता। तो जो अमृत वेले का समय है उसमें भोलानाथ बाबा से हमें असीम वरदान मिलते हैं। वो एक प्रकार का हमारा बचपन है। और कहते हैं बचपन में जो पालना माँ बाप से मिलती है वो सारा जीवन काम आती है। तो अमृत वेले बाबा से हमें जो शक्तियाँ मिलती हैं वो सारा दिन का जो हमारा 24 घंटे का जीवन है उसमें हमको काम आती हैं। लेकिन अमृत वेले का आधार भी हमारा रात का समय होता है। जैसे कहते हैं पिछले जन्म के संस्कार व्यक्ति अगले जन्म में ले जाता है, इसी तरह से पिछले दिन की स्मृतियां भी हम अगली सुबह अपने साथ लेकर के आते हैं। और अंतमति सो गति कहा गया है, रात को सोते समय हमारी जैसी मति होती है सुबह उठते ही उसी प्रकार की हमारी गति भी होती है। तो रात को हम मन और बुद्धि रूपी बर्तन को बिल्कुल स्वच्छ करके सोए तो सुबह उठेंगे तो इसमें बाबा की शक्तियां, बाबा के वरदान, ज्ञान गुण, बाबा की दुआएं सब के सब बहुत अच्छे से भर जाएंगे। तो हर रोज हम अपने बुद्धि रूपी बर्तन को इतना क्लीन करें सोने से पहले। इसलिए बाबा ने नियम बनाया कि रात को सोने से पहले आधा घंटा योग में बैठो। जिस कमरे में आपको सोना है उस कमरे में आधा घंटा पहले बातचीत बंद कर दो। बाबा ने ये भी कहा है अगर किसी का फोन आता है तो कमरे से बाहर जाकर के सुनो, कमरे में नहीं सुनो, नहीं तो बातों के वातावरण में बाप भूल जाता है। और बाबा ने ये भी कहा है कमरे का माहौल भी योग युक्त हो, अगरबत्ती जलाइए, सफेद चादर बिछाइए और महसूस कीजिए कि मैं आत्मा अभी फाइनल यात्रा पर जा रही हूँ और परम धाम में चले जाइए, क्योंकि सुबह सुबह परम धाम से ही हमको अवतरित भी होना है। तो सुबह सुबह यूं तो अमृत वेला 4 से 4:45 है, लेकिन कई बच्चे 2 बजे भी उठते हैं, कई 2:30 बजे भी उठते हैं। तो जो जितना लंबा समय अमृत वेला बाबा से शक्तियां ले सके वो शक्तियां सारा जीवन अर्थात आगे के टीचर रूप की पालना में भी काम आएंगी, सतगुरु में भी काम आएंगी। तो अमृत वेले पिता के रूप में बाबा भोलेनाथ के रूप में हमारी पालना करते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि टीचर के आगे तो बच्चे को बड़ा डिसिप्लिन से बैठना पड़ता है, लेकिन अमृत वेले के लिए तो बाबा ने बहुत सारी छूट दे रखी हैं। जैसे बाबा कहते हैं बच्चे लेटे लेटे भी याद कर सकते हो, या सुबह क्लास में जब हम आते हैं तो नहाने धोने का नियम पक्का है। लेकिन अमृत वेले तो बाबा ने छूट दे रखी है, पिता के रूप में हम केवल चेहरा धो करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहन करके बाबा के पास आके बैठ सकते हैं। तन भी स्वच्छ चाहिए, मन भी और वस्त्र भी स्वच्छ हो, तब हमें सुबह सुबह बाबा के अमृत वेले वरदान मिलते हैं और ये हमारा बचपन पूरा हो जाता है। उसके बाद बाबा भी अपना रूप बदल लेते हैं, शिक्षक का रूप धारण कर लेते हैं और हम बच्चे भी अब छोटे बच्चे से बड़े बच्चे बन करके स्टूडेंट रूप में पढ़ने की तैयारी के साथ बाबा के सामने बैठ जाते हैं। और ये मुरली क्लास का जो 2 घंटे का समय है, इसमें बाबा टीचर का पार्ट प्ले करते हैं, टीचर रूप में आदि मध्य अंत की पढ़ाई हमें पढ़ाते हैं। लौकिक दुनिया में हम देखते हैं जिस बच्चे को टीचर का जितना ज्यादा रिगार्ड होता है, टीचर से प्यार होता है, टीचर की एक एक बात को ध्यान से सुनता है, तो वो बच्चा पढ़ाई में आगे जाता है और टीचर के दिल पर भी चढ़ता है। तो ऐसे ही मुरली क्लास से पहले योग करना, मुरली में नियम से हर एक बात को ध्यान से सुनना, उस पे मनन करना, उसकी गहराई में जाना, जीवन में उसको उतारना, तो वो बच्चे टीचर रूप में जैसे बाबा का रिगार्ड रखते हैं और बाबा की दुआओं के पात्र बनते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि बाबा की मुरली में सारा दिन में हमारे सामने जो बातें आने वाली होती हैं, उनकी पहले से सावधानी दी जाती है। और जैसे लौकिक में टीचर हमेशा स्टूडेंट को जागरूक करते हैं, पढ़ लो, ये समय फिर नहीं आएगा, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ बाद में आप याद करेंगे, तो हम देखते हैं कि सुबह सुबह हमें जो 2 घंटे मिल जाते हैं, बाद में 24 घंटे में दोबारा इस तरह से 2 घंटे आराम से बैठ के पढ़ने के कभी भी नहीं मिलते हैं। तो टीचर के सामने का हमारा जो स्टूडेंट लाइफ है सचमुच बहुत अमूल्य है। और उस दौरान हम बाबा से बहुत ही अमूल्य बातें चारों सब्जेक्ट की पढ़ते हैं, सुनते हैं। और जैसे ही स्टूडेंट लाइफ पूरा होता है तो हम बच्चे बड़े बच्चे हो जाते हैं। लौकिक दुनिया में भी आप देखते हैं बच्चे की जब पढ़ाई पूरी हो जाती है तो वो अडल्ट हो जाता है, और जब बच्चा अडल्ट हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तो माँ बाप उसको जिम्मेवारियां सौंपते हैं और कहते हैं अब तुम बालिग हो गए, अब अपना जीवन अपने आप चलाओ, हमने तुमको पाल पोस के बड़ा कर दिया, पढ़ा दिया, अब अपने कर्मों के लिए तुम जिम्मेवार हो। तो जैसे ही मुरली क्लास पूरी होती है हम बच्चे कर्म क्षेत्र पर उतरते हैं, बड़े बच्चे हो जाते हैं और बाबा भी अपना रूप बदल लेते हैं। अब बाबा टीचर से सतगुरु बन जाते हैं और अब हम बच्चों के एक एक कर्म का हिसाब किताब बाबा के रजिस्टर में लिखा जाता है। इसलिए एक बहुत सुंदर गीत की लाइन है, मेरे सतगुरु के दरबार में सब लोगों का खाता, कभी हम ये नहीं कहते मेरे बाप के दरबार में सब लोगों का खाता या मेरे टीचर के दरबार में सब लोगों का खाता, नहीं, मेरे सतगुरु के दरबार में सब लोगों का खाता। और अब लोगों के साथ हमारा लेन देन शुरू होता है, जिसको हम कहते हैं पब्लिक डीलिंग शुरू हो जाती है। अमृत वेले तो हम पब्लिक के बीच में थे ही नहीं, मुरली क्लास में भी हम पब्लिक के बीच में तो थे ही नहीं, लेकिन जैसे ही कर्म क्षेत्र पर जाते हैं अनेकानेक लोग हमारे कर्मों को देखते हैं, नोट करते हैं और ये भी देखते हैं कि ये तो बाबा के बच्चे हैं, ज्ञान सुनने वाले हैं, तो इनके कर्म ऐसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे जब कर्म करते हो तो कर्म के साथ सतगुरु ने एक चीज ऐड की है और उसका नाम है धर्म। सतगुरु कर्म के साथ धर्म का संतुलन करना सिखाता है, सतगुरु धर्म युक्त कर्म करना सिखाता है। कर्म तो हम पहले भी करते थे, लेकिन जब से सतगुरु का साथ मिला, सतगुरु की दुआएं मिली, तो हमें कर्म करने की कला आ गई। अब हम जो भी कर्म करते हैं, उस हर कर्म में योग शामिल है, धर्म शामिल है, और इसलिए हर कर्म की पदम गुणा कमाई होती। जब तक कर्म में योग नहीं था और धर्म नहीं था, तब तक हमारा कर्म कोड़ी तुल्य था, लेकिन जब से बाबा सतगुरु रूप में मिला, उसने हमारे कर्मों को हीरे तुल्य बना दिया, कर्म करना सिखा दिया। लेकिन साथ में ये भी सावधानी दी कि अगर धर्म युक्त कर्म करेंगे तो बाबा की दुआएं मिलेंगी, लेकिन अगर कर्म से धर्म छूट गया तो जैसे कहावत है, सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए, तो लोग टीका करेंगे कि देखो ये ज्ञान में जाता है लेकिन इसका कर्म कैसा है। इसलिए बाबा ने हमें कर्म किस विधि किया जाए बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। थोड़े दिन पहले एक मुरली आई थी, आपको याद होगी, बाबा ने कहा कि जीवन में अतिंद्रिय सुख के झूले में अगर झूलना है तो धर्म और कर्म दोनों का संतुलन रखो। बाबा ने कहा था कि जैसे कोई झूले पर झूलता है तो झूले की दोनों रस्सियां संतुलित होती हैं, एक रस्सी छोटी और एक बड़ी हो तो झूलने वाले को आनंद नहीं आता, एक रस्सी टूट जाए तो वो झूला ही नहीं कहलाता। दोनों रस्सियां हों और दोनों ही एक समान हो तब झूला झूलने में मजा आता है। तो बाबा ने कहा, जीवन रूपी झूले का आनंद भी तब आता है जब धर्म की रस्सी और कर्म की रस्सी दोनों एक समान हो। और बाबा ने हम बच्चों को धर्म का भी अर्थ समझाया। धर्म का मतलब है धारणा। धारणा किस चीज की? दिव्य गुणों की धारणा, शक्तियों की धारणा। बाबा ने कहा, जब आप कर्म करते हो तो ये चेक करो कि मेरे से कोई दिव्य गुण छूट तो नहीं गया। जैसे कोई व्यक्ति काम करता है तो कोई चीज टूट जाती है या कोई चीज बिगड़ जाती है या कई बार जल्दबाजी में शब्द ऊपर नीचे निकल जाते हैं, कोई उसे टोकता है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो कहता है मैं काम में व्यस्त था ना, काम में बहुत बिजी था ना, काम का प्रेशर बहुत ज्यादा था ना, इसलिए चीज टूट गई या बिगड़ गई या मुझे थोड़ा क्रोध आ गया या मेरे से जल्दबाजी हो गई। अब हम देखें कि काम में तो हम बिजी थे लेकिन धर्म तो छूट गया, कर्म तो हम करी लेकिन कर्म के साथ धैर्य भी तो चाहिए, यही तो धर्म है। कर्म के साथ वाणी का मिठास भी तो चाहिए, यही तो धर्म है। और कर्म के साथ सावधानी भी तो चाहिए, यही तो धर्म है। अगर हम कर्म ही कर्म करते रहे, वाणी की मिठास भी छूट गई, धैर्य भी छूट गया, सावधानी भी हट गई, तो क्या कहेंगे? हमारे रस्से का केवल एक झूला है, हमारे झूले की केवल एक रस्सी और दूसरी रस्सी टूट गई, तो झूलने में आनंद नहीं आएगा, कर्म में सुख नहीं मिलेगा, ना हमें मिलेगा ना हम सामने वाले को दे पाएंगे। तो सतगुरु के रूप में बाबा हमें बार बार कर्मों की सावधानी देते हैं। बच्चे कर्म करो, कर्म तो सभी करते हैं, लेकिन कर्म करते हुए सतगुरु की दी हुई सावधानी याद रही, सतगुरु की श्रीमत याद रही, या केवल कर्म किया? अगर केवल कर्म किया और सतगुरु की शिक्षा को याद नहीं रखा तो नंबर कितने मिलेंगे? जैसे लौकिक दुनिया में बच्चे पढ़ाई पढ़ते हैं तो किस सब्जेक्ट में पेपर में कितने नंबर मिलेंगे उसके लिए एक नियम होता है। कई बच्चे प्रश्न का उत्तर तो बहुत अच्छा दे देते हैं लेकिन उनकी लिखाई अच्छी नहीं होती, तो एग्जामिनर क्या करता है, लिखाई के नंबर काट लेता है। हालांकि प्रश्न बहुत अच्छा उसने उत्तर के रूप में लिखा लेकिन लिखाई अच्छी नहीं थी तो वो 100 में से 50 नंबर काट लेता है, 50 नंबर देगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी लिखाई बहुत अच्छी होती है लेकिन प्रश्न का उत्तर ठीक नहीं लिखा तो एग्जामिनर क्या सोचता है, भाई मोती जैसे अक्षर हैं, इसको कुछ तो मिलना चाहिए, तो उत्तर ठीक ना होते भी लिखाई के नाम के नंबर दे देता है। तो ऐसे ही कर्म हमने किया, खाना बहुत अच्छा बनाया, बहुत वैरायटी बनाई, ये आधा कर्म हुआ। लेकिन जब परोसने लगे तो या तो ठंडा परोस दिया या जल्दबाजी में परोसा या कुछ मुख से बोलते हुए या कुछ थोड़ा इरिटेशन में परोसा, तो बनाने के तो पूरे 50 नंबर मिल गए लेकिन परोसने के वो नंबर कट गए, आधे नंबर मिले। तो कर्म के साथ धर्म के जब नंबर जुड़ते हैं तो हमारे खाते में हमें पूरे नंबर मिलते हैं। और बाबा ने कहा नहीं तो बच्चों के आधे नंबर माया ले जाती है। और दिन भर में हम कितने कर्म करते हैं, एक होती है कर्म कुशलता और एक होती है धर्म कुशलता। लौकिक दुनिया में कर्म कुशलता पे लोगों का बहुत ध्यान है और योग से कर्मों में कुशलता तभी आती है जब उस कर्म के साथ धर्म होता है। आप देखते हैं लौकिक दुनिया में लोग बड़ी स्किल सीख लेते हैं, कौशल्य सीख लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति गाड़ी चलाने में बहुत एक्सपर्ट है, कर्म करने में तो बहुत एक्सपर्ट है, कर्म तो उसको बहुत अच्छा आता है, लेकिन रोड पे गया सामने से एक और गाड़ी आ गई, वो भी बहुत एक्सपर्ट है गाड़ी चलाने में, लेकिन जब आमने सामने आए तो वो कहता है तुम पीछे हट जाओ, वो कहता है तुम पीछे हट जाओ। काम में तो दोनों कुशल है लेकिन कर्म कुशलता के साथ साथ धर्म कुशलता भी चाहिए। अब धर्म क्या कहता है? धर्म कहता है मैं बदल जाऊं, मैं झुक जाऊं, सामने वाला नहीं बदल रहा है तो मैं बदलूं। लेकिन केवल कर्म कुशलता है तो दोनों एक दो को उंगली दिखा रही है, तुम बदलो तुम बदलो। और इसी में एक के पीछे बहुत लाइन लग गई, दूसरे के पीछे भी बहुत लंबी लाइन लग गई, सारा ट्रैफिक जाम हो गया। अब जो ट्रैफिक जाम हुआ उसमें कितने लोग होंगे, किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी बच्चे को स्कूल जाना है, किसी को हवाई यात्रा करनी है, किसी को दूसरी ट्रेन पकड़नी है। अब सबका टाइम व्यर्थ जा रहा है और इसका बोझ किस पे चढ़ेगा, जिसमें केवल कर्म कुशलता है, धर्म कुशलता नहीं। तो सतगुरु ने हम बच्चों को परफेक्ट कर्म करने की कला सिखाई कि लौकिक दुनिया के हिसाब से आप अच्छे कर्म, कुशल कर्म करो, लेकिन साथ साथ कर्म में दिव्यता हो, नम्रता हो, सत्यता हो, धैर्य हो, पवित्रता हो, सबको सुख देने की भावना हो। तो जैसे कर्म के साथ आपका पुण्य का खाता जमा हो जाएगा। कई बार आप किसी बुजुर्ग आदमी को, महिला को ये भी कहते सुनते हैं कि मैंने सारा जीवन इतना कर्म किया लेकिन मुझे मिला क्या। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो कर्म किया उसके फल से हम खुश नहीं, अर्थात हमारे कर्म का हमें जो कीमत मिली, जिस भाव हमारा कर्म गया वो भाव हमें बहुत कम लग रहा है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हमने जीवन के 50 साल 60 साल कर्म तो किए, लेकिन जैसे बाबा कहते हैं बच्चे, कर्म अगर धर्म के बिना किया गया तो उसकी कीमत भूसे के भाव जाती है। आपने देखा ना, बाजार में आप अनाज के दाने को बेचो और अनाज के भूसे को बेचो, ज्यादा कीमत किसकी मिलती है? अनाज के दानों की कीमत ज्यादा मिलती है, भूसे की तो कोई कीमत नहीं। दोनों चीजें इकट्ठी हैं, पैदा इकट्ठी होती है, लेकिन भूसे में से जब दाना निकल जाता है तो भूसे का भाव बाजार में बहुत कम मिलता है और दाने का भाव वो तो बहुत ज्यादा मिलता है। आप 100 बोरी दाने की बेचो, कई लाख मिलेंगे। 100 बोरी भूसे की बेचो, उसमें वजन भी नहीं होता और उसका भाव भी नहीं होता। तो व्यक्ति ने 50 साल कर्म तो किए, 60 साल कर्म तो किए, लेकिन वो कर्म भूसे के भाव बिके। कर्म ऐसे किए कि जिनके लिए किए वो भी मुकर गए, कहते तुमने हमारे लिए किया ही क्या, वो भी मानने को तैयार नहीं। तो कर्म भूसे जैसे थे, क्योंकि कर्म परमात्मा को भूल करके, धर्म को भूल करके किए गए और उनका जो फल मिला उसे देख के हम खुश नहीं है। बहुत कम मिला, कुछ भी नहीं मिला, मेहनत तो बहुत की, प्राप्ति तो कुछ नहीं हुई। लेकिन जिसने कर्म के साथ धर्म को जीवन में अपनाया, बच्चों को पालना की लेकिन नम्रता के साथ पालना की, पवित्रता के साथ पालना की, सत्यता के साथ पालना की, कारोबार किया उसमें भी सब सद्गुणों और शक्तियों को साथ रखा, तो वो अपने कर्म के फल को देख करके खुश होता है, क्योंकि उसका कर्म बहुत महंगे दामों पर जाता है। इसलिए हम अपने कर्म रूपी उत्पाद को कोड़ी तुल्य ना बनाएं, लेकिन हीरे तुल्य बनाएं, क्योंकि कर्म हमारी अपनी रचना है। और आप आजकल ये भी शब्द सुनते हैं, लोग कहते हैं कि आज का आदमी धर्म कर्म को भूल गया है। तो वास्तव में कर्म के साथ जीवन की ऊंची धारणाओं को भूल गया है। कर्म तो वो करता ही है, कर्म करना नहीं भूला। सुबह से शाम तक 12 घंटे कई कई 14 घंटे भी काम करते हैं, लेकिन धर्म को भूल गया तो परिणाम क्या निकलता है? इतना अधिक काम करने के बाद भी जीवन में संतुष्टि नहीं आती है। तो सतगुरु के रूप में प्यारे बाबा ने हम बच्चों को एक एक कर्म की गहन गति समझाई है और एक एक कर्म को करने की विधि सिखाई है और एक एक कर्म के द्वारा पुण्य का खाता जमा करने की बहुत सुंदर कला बताई है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चे मकान तो दुनिया में सब बनाते हैं, ये कर्म है, लेकिन जब उसी मकान में बाबा के लिए एक स्थान बन जाता है जहाँ बैठ करके हम बाबा को याद करते हैं, औरों को बाबा की याद दिलाते हैं, तो मकान बनाना एक कर्म है और बाबा की याद का स्थान बनाना उस कर्म के साथ धर्म का मेल है। भोजन खाना एक कर्म है, लेकिन बाबा की याद में खाना, अनासक्ति से खाना, संयम के साथ खाना, स्वास्थ्य के अनुकूल खाना, समय पर खाना, विधि पूर्वक खाना, ये भोजन रूपी कर्म के साथ धर्म का जोड़ है। और जब ये दोनों चीजें जुड़ती हैं तो परफेक्ट कर्म बनता है जिसमें हमें संतोष मिलता है और लोगों की हमें दुआएं मिलती हैं। और इस तरह से चाहे हम शरीर के कर्म करते हैं, शरीर के संबंधों के लिए कर्म करते हैं, या समाज में संसार में कोई भी कर्म करते हैं, सारा दिन हम कर्म करते हैं, तो हम ऐसे कर्म करें जिन्हें देख करके लोगों के मन से वाह वाह निकले, हम बिजी भी रहें पर इजी भी रहें, हम समय भी सफल करें, स्वास्थ्य भी सफल करें, वर्तमान की कमाई के साथ साथ भविष्य की भी कमाई करें, क्योंकि सतगुरु हमेशा आगे के जन्म संवारता है। सतगुरु का ये लक्ष्य होता है कि मेरे फॉलोवर का अगला जन्म बहुत श्रेष्ठ बने, और ये सतगुरु 21 जन्मों को संवारता है। तो एक एक कर्म में इतनी ताकत हो कि वो 21 जन्म की कमाई कराने योग्य बने, ऐसे कर्म हमें हमारे सतगुरु ने सिखाए हैं। इसलिए बाबा ने एक मुरली में कहा था कि सतयुग में हर एक व्यक्ति धर्मात्मा भी होगा और कर्मात्मा भी होगा। जो राजा होगा वो सर्वोच्च धर्मात्मा होगा, और धर्म का जो चिन्ह है वो लाइट का ताज है, लेकिन राजा कर्म भी करेगा अर्थात राज्य सत्ता में भी सबसे बड़ा होगा, और उसका सिंबल रतन जड़ित ताज है, और प्रवृत्ति मार्ग भी है, पारिवारिक जीवन व्यतीत करेगा। बाबा ने कहा द्वापर युग आते ही ये दोनों अलग अलग हो गए, धर्म अलग हो गया, कर्म अलग हो गया, दोनों का रिश्ता टूट गया। कर्म करने वाले, पारिवारिक जीवन जीने वाले अलग हो गए, और धर्म की शिक्षा देने वाले अलग हो गए। जिन्होंने धर्म को अपनाया उन्होंने कर्म का त्याग कर दिया, और जो कर्म करने वाले थे उन्होंने धर्म का त्याग कर दिया। तो बाबा ने कहा दो पुर हो गए, लेकिन संगम युग में बाबा आते हैं तो दोनों को फिर से मिला देते हैं, अर्थात हमें कर्म भी करना है और कर्म करते हुए जीवन की ऊंची धारणाओं को भी साथ रखना है। दुनिया में लोग कहते हैं कि अगर हम कर्म करेंगे तो कर्म करते हुए हमसे पाप हो जाएंगे, इसलिए हम कर्म करेंगे ही नहीं ताकि पाप ना हो, और वो लोग कर्म सन्यासी बन गए। लेकिन कर्म करने में अगर पाप होंगे तो खाने में भी तो पाप होंगे ना। आदमी कर्म का तो त्याग कर सकता है, पर क्या भोजन का त्याग कर सकता है? और भोजन जिन लोगों से वो मांगते हैं या जिनका खाते हैं, उन्होंने अगर वो भोजन पाप से कमाया होगा तो खाने वाला भी उसमें भागीदार बनेगा। इसलिए कर्म का त्याग हो ही नहीं सकता। बच्चा भी जन्म लेने के बाद पहले कर्म करता है, क्योंकि सांस लेना भी कर्म है, पलक झपकना भी कर्म है, रोना हंसना भी कर्म है। खाता तो बाद में है पर कर्म पहले करता है। और लौकिक पढ़ाई में भी पहला अक्षर क है और दूसरा अक्षर ख है, अर्थात पहले कर्म करो और फिर खाओ, और तीसरा अक्षर है ग, खाने के बाद प्रभु के गुण गाओ। तो कर्म संन्यास हो ही नहीं सकता है। तो बाबा ने कहा, बाबा संगम युग पर इस टूटे हुए रिश्ते को जोड़ देते हैं, धर्म और कर्म को मिला देते हैं। आप बच्चे निवृत्ति मार्ग वाले नहीं हो, प्रवृत्ति मार्ग वाले हो, इसलिए दोनों को साथ लेकर के चलो। तो ये सतगुरु की शिक्षा, सारा दिन हमारे सिर माथे रहे, सतगुरु के रूप में हम सारा दिन बाबा को सामने रखें। इस कर्म के लिए बाबा की क्या श्रीमत है, इस कर्म के लिए बाबा की क्या श्रीमत है। और हम देखते हैं कि अमृत वेले का समय तो थोड़ा होता है, शिक्षक की पढ़ाई का समय भी थोड़ा होता है, लेकिन कर्म का पीरियड बहुत लंबा है। यही समय जो दिन भर हम कर्म करते हैं, अगर हमारा श्रीमत प्रमाण जाता है तो हमारी बहुत कमाई जमा होती है। और दिन भर हमने कर्म कैसे किए उसकी चेकिंग के लिए नुमा श्याम के समय हम फिर बाबा की याद में बैठते हैं। अगर हम याद में बैठते ही बाबा के पास पहुंच गए तो ये इस बात की निशानी है कि दिन भर के हमारे कर्म सतगुरु की छत्र छाया में पूरे हुए। लेकिन जैसे ही नुमा श्याम को योग में बैठे और कर्मों की स्मृति आई, कर्मों का चिंतन चला, तो इसका अर्थ ये हुआ कि कर्मों ने हमें बांध लिया, हम कर्मों में बंध गए। हमारी स्मृति हमारी वृत्ति कर्मों के बंधन में है, उनसे छूट करके हम बाबा के पास नहीं जा पा रहे हैं। इसका मतलब कर्म धर्म को भूल करके किए थे, कर्म बाबा की दुआओं प्रमाण नहीं किए थे, और फिर हम अपना खाता चेक करके चेंज करी। नुमा श्याम के बाद भी हमारे पास थोड़ा समय है, उसमें हम फिर से योग युक्त होकर के कर्म करें, क्योंकि जो कर्म योग युक्त होकर किए जाएंगे वो हमें बांधेंगे नहीं। बाबा ने कहा है, बच्चे आपको तो पिछले 63 जन्मों के कर्म बंधन भी काटने हैं। अगर वर्तमान के कर्म आपको बांधते रहे तो पिछले कैसे कटेंगे? इसलिए दिन भर में जब हम कर्म करते हैं तो हमारे सामने दो चीजें आती हैं। बाबा ने कहा है, एक है वस्तु और दूसरे हैं व्यक्ति। तो बाबा ने कहा, अगर कर्म बंधन से मुक्त रहना है तो वस्तुओं के प्रति अनासक्त भाव और व्यक्तियों के प्रति आत्म भाव, अगर ये दो धारणाएं पक्की हैं तो कर्म बंधन नहीं बनेंगे। और इस तरह से श्रेष्ठ कर्म करते करते हम अपने सतगुरु की नजरों में चढ़ेंगे। एक बहुत सुंदर कहावत है, घोड़े का गिरा संभल सकता है लेकिन नजरों का गिरा संभल नहीं सकता। हमें अपने सतगुरु की नजरों में रहना है, हमें अपने सतगुरु की दुआओं में पलना है। तो हम सारा दिन इस तरह से कर्म करें और फिर रात को बाबा को चाट दे करके, मन को खाली करके, स्वच्छ करके, मन बुद्धि बाबा को समर्पित करके बाबा की गोदी में चले जाएं, तो हमारे 24 घंटे सफल होंगे। संगम युग में हर रोज अगर हमारे 24 घंटे सफल होते हैं तो पूरा संगम युग सफल है। और इन तीनों रूपों में प्यारे बाबा की दुआएं हमें मिलेंगी और हम बाबा की पलकों में बैठ करके बाबा के साथ जाएंगे। ओम शांति।